लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे सृष्टि के संसाधनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा हेतु प्रार्थना करते हैं, ताकि प्राकृतिक संसाधनों को लूटा नहीं जाए बल्कि न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से साझा किया जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 6 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रतेली ए सोरेले, बोंजोर्नो, इल वांजेलो दी क्वेस्टा डोमेनिका è tratto dal quarto discorso di Gesù nel racconto di Matteo, conosciuto come discorso comunitario o discorso ecclesiale.
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। इस रविवार का सुसमाचार पाठ मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु के चौथे उपदेश से लिया गया है, जिसको सामुदायिक या कलीसियाई उपदेश के रूप में जाना जाता है। आज का पाठ भाईचारापूर्ण सुधार के बारे बोलता है और ख्रिस्त जीवन के दोहरे आयाम सामुदायिक एवं व्यक्तिगत पर चिंतन करने हेतु प्रेरित करता है। सामुदायिक जो सुरक्षित एकता की मांग करता है या कलीसिया की एकता है, और व्यक्ति जो हर व्यक्ति के अंतःकरण के लिए ध्यान और सम्मान हेतु बाध्य करता है। भाई जिसने गलती की है उसके सुधार के लिए यीशु सुधार का उपाय बतलाते हैं। यीशु हमेशा सुधार लाना और बचाना चाहते हैं। सुधार के तीन चरण हैं। पहला चरण कहता है उसे अकेले में समझाओ, अर्थात उसकी गलती को लोगों के सामने नहीं लाना। इसका अर्थ है कि अपने भाई के पास विवेक से जाना, उसका न्याय करने के लिए नहीं बल्कि उसने जो किया है उसे महसूस करने में मदद करने के लिए। संत पापा ने कहा, हमने कितनी बार ऐसा अनुभव किया होगा जब किसी ने आकर कहा, सुनो तुमने गलती की है, तुम्हें इसमें कुछ सुधार लाना होगा। शायद शुरू में हमें गुस्सा आया होगा, किंतु बाद में हमने धन्यवाद दिया, क्योंकि यह भ्रातृत्व एकता मदद करने और सुधार लाने का चिन्ह था। संत पापा ने कहा कि यीशु की शिक्षा का पालन करना कई कारणों से आसान नहीं होता। एक भय होता है कि वह भाई अथवा बहन बुरी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। कई बार हमें उन पर पर्याप्त विश्वास नहीं होता, किंतु हर बार जब हम ऐसा करते हैं हमें महसूस होता है कि यही प्रभु का रास्ता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि मेरे अच्छे मतलबों के बावजूद पहला प्रयास असफल हो जाए। ऐसी स्थिति में छोड़ नहीं देना और यह कहना अच्छा नहीं है, खुद जानो, मैं इसे अपना हाथ धो लेता हूँ। संत पापा ने कहा कि यह ख्रिस्ते होने का चिन्ह नहीं है। छोड़ नहीं देना चाहिए, लेकिन कुछ अन्य भाई बहनों के समर्थन की खोज करनी चाहिए। यीशु कहते हैं, यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और एक दो व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि दो या तीन गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। संत पापा ने कहा,
questo è un precetto della legge mosaica, sebbene possa sembrare contro l'accusato, in realtà serviva a tutelarlo dai falsi accusatori.
यह मूसा का नियम है, यद्यपि यह अभियुक्त के लिए आहत होने के समान लग सकता है, किंतु यह उसे गलत अभियोगियों से बचा सकता है। यीशु इससे भी आगे बढ़ते हैं। वे कहते हैं, दो गवाह दोष लगाने अथवा न्याय करने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए बुलाए जाते हैं। हम और आप सहमत होकर उस स्त्री या पुरुष के पास जाएं जिसने गलती की है, जो बुरा प्रभाव डाल रहा है। यही मनोभाव यीशु हमसे चाहते हैं। वास्तव में यीशु बतलाते हैं कि यह दृष्टिकोण गवाहों के साथ दूसरा दृष्टिकोण भी असफल हो सकता है। यह मूसा के नियम के विपरीत है, जिसके लिए दो या तीन गवाहों की गवाही दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थी। निश्चय ही दो या उससे अधिक भाई बहनों का प्रेम उसके लिए अपर्याप्त हो सकता है, क्योंकि वह स्त्री या पुरुष कठोर है। इस हालत में यीशु कहते हैं, इससे कलीसिया को, समुदाय को बताओ। कुछ परिस्थितियों में पूरा समुदाय ही इसमें शामिल होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरे भाई बहनों पर असर डालती हैं। इसके लिए अधिक प्रेम की जरूरत होती है, किंतु कभी कभी यह भी पर्याप्त नहीं होता। और यीशु कहते हैं कि यदि वह कलीसिया को भी मानने से इनकार कर दे तो उसे गैर यहूदी या नाकेदार जैसा समझो।
Solo il padre potrà mostrare un amore più grande di quello che tutti i fratelli messi insieme.
San Papa ne कहा कि यह कहना अत्यंत तिरस्कारपूर्ण है और वास्तव में हमें निमंत्रण देता है कि हम उसे ईश्वर के हाथों छोड़ दें। सभी भाई बहनों के प्रेम से बढ़कर सिर्फ पिता ही प्रेम दिखा सकते हैं। यीशु की यह शिक्षा हमें अच्छा व्यवहार करना सिखलाता है, क्योंकि उदाहरण के लिए जब हम किसी भाई में कोई गलती, कोई त्रुटि अथवा फिसलन देखते हैं, तो साधारणतया सबसे पहले दूसरों के पास जाते और उसके बारे बातें करते हैं। शिकायत समुदाय का हृदय बंद कर देता है, कलीसिया की एकता को तोड़ देता है। सबसे बड़ा शिकायत करने वाला है शैतान, जो हमेशा दूसरों की चुगली करता है, क्योंकि वह झूठा है जो कलीसिया को बांटना चाहता है, ताकि भाई बहनों को दूर कर सके और समुदाय का निर्माण ही ना हो। संत पापा ने सभी विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा,
Il chiacchiericcio è una peste più brutta del Covid, più brutta.
भाइयों और बहनों, हम शिकायत नहीं करने का प्रयास करें। शिकायत कोविड से भी अधिक खतरनाक महामारी है। आइए हम चुगली नहीं करने का प्रयास करें। यीशु के प्रेम ने चुंगी जमा करने वाले और गैर यहूदी जो उस समय कलंकित थे, उनका आलिंगन किया। संत पापा ने आह्वान किया कि कभी कभी हमारे मानवीय प्रयास विफल हो सकते हैं और केवल ईश्वर के सामने लाकर ही भाई को उसके अंतःकरण और कार्यों के लिए जिम्मेदार होने में मदद दिया जा सकता है। यदि यह उपाय काम नहीं करता है तो गलती करने वाले भाई या बहन के लिए चुप रहें और प्रार्थना करें। संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना की कि धन्य कुंवारी मरियम हमें भ्रातृत्वपूर्ण सुधार, एक स्वस्थ व्यवहार करने में मदद दे, ताकि हमारे समुदायों में भाईचारापूर्ण संबंध बना रहे, जो क्षमाशीलता पर स्थापित हो और सबसे बढ़कर ईश्वर की करुणा की अजेय शक्ति को स्थापित कर सके। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc omnibus usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने रोम के विश्वासियों तथा विभिन्न देशों के तीर्थयात्रियों, परिवारों, पल्ली दलों एवं संगठनों का अभिवादन किया। खासकर उन्होंने रोम के उत्तरी अमेरिका कॉलेज के गुरुकुल छात्रों तथा स्लोवेनिया के लुबियाना सेमिनरी के छात्रों का अभिवादन किया। उन्होंने सभी को प्रोत्साहन देते हुए कहा, मैं सभी लोगों को प्रोत्साहन देता हूं कि आप अधिक से अधिक यीशु कोने के पत्थर एवं भले चरवाहे से संयुक्त रहें। तब संत पापा ने महिला खिलाड़ियों तथा संत स्टेफन लोदिजियानो के युवाओं का भी अभिवादन किया, जिन्होंने एक उदारता प्रयास में भाग लिया है। उन्होंने कहा, ये दोनों दल साहसी हैं, आप खुशी और दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें। तत्पश्चात संत पापा ने विभिन्न देशों से एकत्रित सभी विश्वासियों का अभिवादन किया, जिसमें पोलैंड, लेबनान, फ्रांस और मेक्सिको के विश्वासी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, आप भी साहसी हैं। और अंत में संत पापा ने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
अपनों को तो सभी करते हैं। आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। हमारे सामान्य घर की रक्षा के लिए दुनिया भर की कलीसियाओं और धर्म संघी समुदायों द्वारा प्रार्थना और कार्यवाही का एक वार्षिक उत्सव 1 सितंबर को सृष्टि के साथ विश्व दिवस से शुरू हुआ और 4 अक्टूबर असीसी के संत फ्रांसिस के पर्व तक जारी रहेगा। इसी के मद्देनजर संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट प्रेषित कर सभी विश्वासियों को दुनिया के रहस्य पर चिंतन करने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, दुनिया समस्याओं का हल करने से बढ़कर एक आनंद का रहस्य है, जिसे हम खुशी और प्रशंसा के साथ चिंतन करते हैं। हैशटैग सृष्टि का मौसम, हैशटैग लौदातोसी। और संत पापा फ्रांसिस 3 अक्टूबर को एक नए विश्व पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए इतालवी शहर असीसी का दौरा करेंगे। शनिवार को जारी एक बयान में वाटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक मतेओ ब्रूनी ने कहा कि भाईचारे और सामाजिक मित्रता पर आधारित नए विश्व पत्र का शीर्षक फ्रातेल्ली तुत्ती या ऑल ब्रदर्स है। शीर्षक, जिसका आधिकारिक अंग्रेजी भाषा संस्करण अभी तक जारी नहीं किया गया है, असीसी के संत फ्रांसिस के लेखन का एक संदर्भ है। आइए हम सभी भाई उस भले चरवाहे पर विचार करें जो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए क्रूस की पीड़ा को सहन किया है। 3 अक्टूबर को संत पापा फ्रांसिस दोपहर को असीसी पहुंचेंगे। वहां वे संत फ्रांसिस के मकबरे पर पवित्र मिस्सा का अनुष्ठान करेंगे। उसके बाद विश्व पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। यह यात्रा निजी रूप से विश्वासियों की भागीदारी के बिना होगी। एक बयान में असीसी के धर्माध्यक्ष डोमेनिको ने कहा कि असीसी शहर भावना और कृतज्ञता के साथ संत पापा फ्रांसिस के आने का इंतजार कर रहा है। वे आगे कहते हैं, जबकि दुनिया एक महामारी का शिकार हो रही है, जिससे बहुत सारे लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है और हमें भाइयों के लिए दर्द महसूस होता है, हम प्यार में सभी के भाई बनने की जरूरत महसूस करते हैं। संत पापा फ्रांसिस द्वारा लिया गया यह कदम हमें भाईचारे के नाम पर हम सभी को एकजुट करता है और जिसे पुनः आरंभ करने हेतु नया साहस और शक्ति देता है। संत पापा के नए विश्व पत्र का शीर्षक उनके मजिस्टेरियम के एक केंद्रीय विषय की याद दिलाता है। 13 मार्च 2013 को परमाध्यक्ष चुने जाने के बाद उसी शाम को संत पापा फ्रांसिस ने पहली बार भाइयों शब्द से विश्व के सभी लोगों को संबोधित किया। भाईचारे का विषय उनके प्रवासियों के निरंतर आलिंगन में भी मौजूद है। संत पापा फ्रांसिस द्वारा 2019 में अबू धाबी में मानव बंधुत्व दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर भाई के प्यार को बढ़ावा देने का एक और उदाहरण मिलता है। उधर अमेरिकी धर्माध्यक्ष सम्मेलन के घरेलू न्याय और मानव विकास समिति के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष पॉल कोकले ने वार्षिक श्रम दिवस के अवसर पर दिए गए अपने बयान में महामारी के बाद दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए एकजुटता, श्रमिकों की गरिमा के लिए सम्मान और उदारता के साथ गरीबों की मदद करने हेतु प्रोत्साहित किया है। महाधर्माध्यक्ष कोकले ने कहा, यह श्रम दिवस बहुत ही सुखद है। हम सभी कोविड-19 महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लाखों लोगों को काम से निकाल दिया गया है और वे चिंतित हैं कि वे बिलों का भुगतान कैसे कर पाएंगे। कुछ श्रमिकों को जरूरी काम करने के लिए अपने घरों से बाहर जाना ही पड़ता है और इस तरह उन्हें वायरस के संपर्क में आने का खतरा बना रहता है। 2 सितंबर को जारी संदेश में महाधर्माध्यक्ष कोकले ने कहा, ईश्वर की छवि और समानता में बनाए गए मानव व्यक्ति की गरिमा हमारे समाज के केंद्र में नहीं है, जिस तरह से होना चाहिए था। कुछ कार्यस्थलों में लोगों की गरिमा और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है, परंतु मुनाफे पर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। यह अन्यायपूर्ण है। महाधर्माध्यक्ष ने कहा, काम की गरिमा और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए हमें एकजुटता का अभ्यास करने की आवश्यकता है। हम इस दौरान स्थानीय खाद्य बैंकों और कैथोलिक उदार संस्थानों को दान देकर उन बेरोजगारों की आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। हर साल श्रमिक आंदोलनों के सम्मान में और देश के विकास में मजदूरों के सामाजिक और आर्थिक योगदान को मान्यता देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मजदूर दिवस सितंबर के पहले सोमवार को एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। उधर रविवार 6 सितंबर को जर्मनी की कलीसिया ने कोविड-19 रोगियों के साथ एकजुटता और प्रार्थना में दिन बिताया। जर्मनी कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष जॉर्ज बैजिंटिंग ने कोविड-19 रोगियों के साथ प्रार्थना और एकजुटता रविवार के पहले सभी पल्लीवासियों के लिए एक पत्र लिखा। लोग जब महामारी के भय और खतरे में जी रहे हैं तो प्रेरितिक देखभाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हम ख्रिस्तियों को कभी भी दया के कार्य करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। पत्र में उन्होंने उन सभी ख्रिस्तियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने दूसरों की मदद की है और संकट के इस महीनों के दौरान ख्रिस्तीय आशा को बनाए रखा है। धर्माध्यक्ष जॉर्ज इस बात पर जोर देते हैं कि वर्षों से जर्मनी में कैथोलिक लोगों ने दुनिया के अन्य हिस्सों में जरूरतमंदों की मदद करते आए हैं। वे लिखते हैं कि कोरोना वायरस अक्सर गरीबों पर ज्यादा प्रहार करता है। इनमें से कई के लिए खुद को वायरस से बचाना मुश्किल होता है क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक उनकी पहुंच नहीं है। इसके अलावा लाखों लोग हैं जिन्होंने अपनी आजीविका के साधन नौकरियां खो दी हैं। उनके पास खाद्य सामग्रियों की कमी है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप में कई लोगों को मदद की जरूरत है और वे वैश्विक कलीसियाई एकता पर भरोसा करते हैं। अपने पत्र के अंत में धर्माध्यक्ष ने पूरी दुनिया के गरीबों के लिए प्रार्थना की जो महामारी और इसके आर्थिक सामाजिक परिणामों से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। हम उनके साथ हैं और अपनी एकात्मकता हम व्यवहारिक तौर पर उनके लिए धन जमा कर प्रदर्शित करते हैं। हम उदार हृदय से दान देकर अपनी एकजुटता अभियान को सफल बनाते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।